पुकार सुनो अब, मंजिल बहुत करीब है। पुरुषार्थ की अंतिम बेला जीवन का अनमोल नसीब है। जो पाया इस जीवन में अब उसको सार बनाना है। बाबा की यादों में रहकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है।
अंतिम समय की अंतिम तैयारी यही है आत्मा की जिम्मेदारी। शांति पवित्रता और योग बल से भरनी है जीवन में खुशहाली। अंतिम समय की अंतिम तैयारी यही है आत्मा की जिम्मेदारी। शांति पवित्रता और योग बल से भरनी है जीवन में खुशहाली।
ओम शांति। आज का आपका विषय है अंतिम समय की अंतिम तैयारी। हमारे भाइयों ने बहुत सुंदर गीत अंतिम समय के पुरुषार्थ के लिए बनाया और बजाया। अंतिम समय के लिए बाबा ने हम सबको लास्ट का सीन, विश्व का वो पिक्चर बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से हमारे सामने रखा है। और हम सब बाबा के बच्चे तो ये समझते ही हैं, जानते हैं, इतना ही नहीं लेकिन महसूस भी करते हैं कि अभी अंत का समय है। अंत के समय का जो सीन है, आज हम चार बातें लेंगे। एक है कि पांच तत्वों का प्रकोप, दूसरा है संबंध और संपर्क में, संबंधों में टकराव, तीसरा है शारीरिक कर्म भोग, और चौथा है तमोप्रधान आत्माओं का, कह सकते इविल सोल का भी प्रकोप, ये भी अंत में होगा। तो ये चार बातें अंत में होनी है, अंतिम समय ऐसा होगा। उसका बाबा ने और विस्तार से वर्णन किया है कि अभी तो हम देखते हैं किस समय पर कौन से तत्व से प्रकोप होता है, चाहे वह भूकंप हो, साइक्लोन हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। बाबा ने एक मुरली में कहा है अभी तो एक एक तत्व अपना जलवा दिखा रहा है। कई बार ना अमेरिका में बीच में जंगल में आग लगी तो ऐसी कि बुझ ही नहीं पा रही थी, कितने लोगों को अपने घर खाली करने पड़े, कितने चिंतित थे गवर्नमेंट भी। तो इस प्रकार के अलग अलग समय पर अलग अलग तत्व अपना रूप दिखा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि एक समय आएगा कि पांचों तत्व एक साथ ग्रुप डांस करेंगे। ग्रुप डांस में होता है ना साथ में, तो ये पांचों तत्व अपना एक साथ जलवा दिखाएंगे। ऐसा समय आना है, अंतिम समय ऐसा है। तो उस पर मैं सोच रही थी कि ये जो भूकंप आता है और बाबा ने हमें ये समझ दे दी है कि तमोप्रधान तत्व क्यों बने हैं, हम आत्माएं तमोप्रधान बने हैं, मनुष्य आत्माओं के कर्मों का, संकल्पों का, शब्दों का इस तत्व को प्रभाव पड़ता है, असर होती है उसकी। तो अभी ये जो भूकंप आता है ये क्यों आता है, कभी कलयुग के अंत में आत्माओं की स्थिति अवस्था ऐसी है कि छोटी छोटी बातों में और घड़ी घड़ी पल पल में अवस्था है वो हिल जाती है। कहते इन्होंने मेरे सामने ऐसी चाल चली जो मेरी स्थिति हलचल में आ गई, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा दिया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। ऐसी व्यवहारिक ऐसी बातों में जल्दी से डिस्टर्ब होना और अवस्था का हलचल में आना हो रहा है, तो उसका प्रभाव फिर धरती भी हिलती है, रहने वाले हिल रहे हैं तो उसका प्रभाव धरती पर भी पड़ता है, इसलिए भूकंप। देखो भूकंप पहले भी आता था लेकिन बहुत लंबे, कहते कितना वर्ष पहले भूकंप आया था जो अभी आया, और आजकल आए दिन न्यूज आते हैं कि यहाँ भूकंप आया, यहाँ भूकंप आया, यहाँ भूकंप आया, क्योंकि हमारी अवस्थाओं का हिलने की गति बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो भी हिल रहे हैं। ऐसे ही सुनामी आती है, हमारे विचारों की सुनामी बाहर भी सुनामी को ले आती है। बाबा ने बहुत अच्छी बात हमें समझाई है कि जो सूक्ष्म में और जो अंदर में होता है वो फिर बाहर होता है। तो मन के संकल्प इतने, किसी ने कुछ कहा, इतना सोच चलने लगा, गति इतनी तेज और नेगेटिव फास्ट गति से संकल्प चलने लगते हैं। कई बार तो इतनी तीव्रता से संकल्प चलते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा पकड़ के बैठ जाता है कि अब कैसे रोकूं इसको, मैं कंट्रोल कैसे करूं। तो ये संकल्पों की सुनामी, ये यहां पर भी सुनामी क्या कर रही है, ले आ रही है। ऐसे ही थोड़ी सी बात के ऊपर हम कितना बरस पड़ते हैं, बात छोटी और इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, बरसेंगे। तो अतिवृष्टि, कहती भाई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप इतना क्यों बोलते हो, इतना क्यों बोल रहे हो। अतिवृष्टि ऐसे ही कई बार देखो तो स्थिति कैसी होती है, ऐसे नर्वस, इतने हताश, चेहरे पर नूर ही नहीं, सूखापन, लाइफ सुखी, कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, जो अच्छा लगता था वो भी नहीं लगता है, और कई बार तो शब्दों में भी निकल आता है मेरा जीवन ही रूखा सूखा हो गया है, ये धरती भी रूखी सूखी हो गई, रीजन तो हम ही हैं। तो ये पांचों तत्वों का ये प्रभाव हमारे कर्मों का प्रभाव, हमारे संकल्प शब्दों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है। अब इन तत्वों की सेवा क्या करें हम? अंतिम समय बताया, अभी अंतिम तैयारी इन तत्वों के लिए क्या करनी चाहिए हमको? इस तत्वों के प्रति हमारा स्नेह, सम्मान, उनके प्रति हमारे हृदय में वो प्यार, उसकी संभाल, इन तत्वों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा हम करते हैं, क्योंकि इन सब से तो हमारा जीवन है। पानी, हवा, ये जमीन है तो हम बैठे हैं, खड़े हैं, इनका तो कितना उपकार है हमारे पास जो हम चुप्त न कर सके। बाबा ने आज कहा सूर्य हमें लाइट देता है, कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम सब कुछ कर रखे हैं। तो इनकी कितनी मेहरबानी है हमारे पर, कितना शुक्रिया करना चाहिए। तो उनके साथ हमारा रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। मुझे याद आता है शिवानी बहन आने वाली थी, एक प्रोग्राम था तो हम जगह जगह पर होल्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, बैनर्स वगैरह। तो एक भाई ने, कई बार वृक्ष होता है तो वहाँ खिला ठोक करके होर्डिंग लगाया था। तो अगले दिन मैं गई थी वहाँ, स्टेज के पास खड़ी थी तो एक यंग लड़का आया इंक्वायरी करते करते कि इनका मुखिया कौन है। तो किसी ने कहा कि वे बहन से मिलो, तो कहा कि बहन ये प्रोग्राम के लिए होल्डिंग लगाया है और झाड़ पर किल लगा करके अभी भाई लगाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कहाँ कहाँ लगाया। मैंने कहा लगाया होगा वो? तो कहते हैं कि वो मैंने देखा, मेरे हार्ट में मुझे तकलीफ होती है, मेरे हृदय में मुझे तकलीफ होती है, वहाँ किल लगी है ना, तो जैसे मुझे लगी हो ऐसा लगता है, प्लीज ना। फिर मैंने भाई को कहा और वहाँ से वो उतार दिया। भाव ये है कि कितना प्रकृति से प्यार, एक चैतन्य आत्मा के साथ जो व्यवहार, वो हमारा, भले वो बोलते नहीं है लेकिन पेन तो होता है ना, पशु प्राणी जीव जंतु व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उसके प्रति भी हमारा प्यार होना चाहिए। हर वर्ष पर्यावरण का प्रोग्राम करते हैं, अभी भी किया था, तो एक मुस्लिम और एक मारवाड़ी, उनका लव मैरिज है लेकिन उनको इतना प्रकृति से प्यार है, बहुत रिच है, लेकिन गार्डन में जाकर के सफाई करना, पौधे लगाना, हरियाली लाना, ये काम करते हैं। अभी दोनों की एज हो गई है, अभी संभाल नहीं पाते, अपने सेंटर से अच्छे कनेक्ट है, तो कहा कि बहन आपके पास भी गार्डन है तो वहाँ पौधे हैं, आप यहाँ ले जाएंगे? तो हमने भाइयों को भेजा कि ले आओ, हम अपने गार्डन में रखेंगे, अभी उनको निकालने हैं। तो वहाँ जब भाई गया तो एक पौधे की डाली को ऐसे खींचा, खींचा तो इतना पेन हुआ उसको। कहते हैं कि आपके बालों को कोई खींचे तो कैसा होगा, है ना, कैसा लगेगा? तो इतना पेन उनको, मतलब कितना रिस्पेक्ट और प्यार है। तो प्रकृति के प्रति हमारा भी रिस्पेक्ट, प्यार और उनकी रक्षा हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे सेवा ले रहे हैं। इसीलिए अंतिम तैयारी में हमको क्या करना चाहिए, बाबा बता रहे हैं कि जब योग में बैठते हो तो प्रकृति को प्रकाश दो, उसको लाइट दो, उसको माइट दो, है ना, और उनसे प्यार से पालो, प्यार से उसको संभालो। बाबा ने भी हमें प्रकृति को इतनी शुभ भावनाओं से देखो, इतने अच्छे श्रेष्ठ भावों से देखो, इतने उपकार के भाव से उनको देखो, ये उनकी रक्षा है, उनकी संभाल है, उनकी रिस्पेक्ट है। और हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे तो वो तत्व हमें भी प्यार करेंगे और हमारा भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि तत्वों की हमने सेवा की है प्यार से, तो तत्व जब तूफान मचाएंगे तब आपको वो सेफ रखेंगे। कर्मों की गति है, आपने उसके लिए क्या किया है तो वो आपका भी ध्यान रखेंगे। इसलिए बाबा ने एक मुरली की, तूफान आया लेकिन बिल्ली के पुंगरे बच्चे हैं वो क्या हो, सेफ रहे। और कई बार न्यूज में भी आप सबने देखा होगा, कहीं भूकंप आया, कई लोग मर गए, कुछ दिनों के बाद अंदर से देखा छोटा बच्चा जीता हुआ निकलता है। ये क्या है, कर्म। हमने कैसे इस प्रकृति के साथ व्यवहार किया है, हम उनका ध्यान रखते हैं, अरस परस से लेन देन, वो भी हमारा क्या करेगी, ध्यान रखेगी। और बाबा ने कहा है वाइसली, जितने हम क्लीन क्लियर बुद्धि, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हमें वो टचिंग भी मिलेगी। मुझे याद है गोरेगांव के कोई पुराने बैठे हो तो बाल वर्ष गवर्नमेंट ने मनाया था, तो वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, अलग अलग स्कूलों के 1200 बच्चे थे और इतनी स्कूलों ने जान निकाली नहीं थी। और जब ये होना था, हम टोलियां सबके लिए बना रहे थे, तब किसी ने न्यूज दिया, रेडियो में टीवी में अनाउंस होने लगा था कि कल बहुत जोर से साइक्लोन आने वाला है, तो सावधानी के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी। तो कुछ भाइयों ने आके कहा कि बहन ऐसे हैं और कल अपना प्रोग्राम भी है तो कैसे करेंगे, इतनी तैयारियां हमने की हुई है, अभी इतनी टोलियां बनी है और अब बनानी है, क्या करना है। एक सेकंड, फिर मैंने कहा कि प्रोग्राम तो होगा ना, बाबा बैठा है। और दूसरे दिन प्रोग्राम हुआ, विजेंद्रा दादी आई थी, हाथी वगैरह थे सब, बहुत अच्छे से प्रोग्राम ग्राउंड में रखा था, हो गया। और सारा सामान लेकर के हम लोग सेंटर पर पहुंचे, उसके बाद ऐसा डेकोरेटर का सामान वहीं था और इतनी जोर से हवा, बारिश वगैरह, तो ये प्रकृति हमें मदद करती है, परमात्मा भी करते हैं और प्रकृति भी। सबको आश्चर्य लग रहा था, तो प्रकृति भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। और इससे सीख है कि अंतिम समय तक व्यक्ति और प्रकृति सबके साथ हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं इतनी श्रेष्ठ और अच्छी हो, हर कोई हमें हेल्प मदद करेगा, क्योंकि व्यवहार पर आधारित है। यहाँ कुछ बैठे हैं वो तो जानते भी हैं, एक जगह पर हमने सेंटर का मकान लिया तो वहां की सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया, कितने भाई बहने आएंगे, बड़ी सोसाइटी थी, आएंगे और फिर इतना आना जाना, सिक्योरिटी क्या यहाँ पास, आपके पास तो नए नए भी आते रहते, ज्यादा लोग आते हैं। तो कहा यहाँ नहीं ये चालू कर सकेंगे। तो अभी मकान ले लिया था, फिर दूसरी जगह ढूंढना भी शुरू किया कि यहाँ तो मना कर रहे हैं। उतने में हमें पता चला कि वहाँ सोसाइटी की जो कमिटी थी वो चेंज हो गई। चेंज हो गई तो मैंने कहा चलो हम अपनी बात क्या करें, वहां पर रखें। तो मैंने कहा कि फलाना फलान व्यक्ति है ना, वो भी सेक्रेटरी बना है और आपके ही विंग में और आपके पड़ोस में है। फिर हमने फोन किया, वो गुजरात से आ रहा था तो भवन में बुलाया, बैठा, हमने बातचीत की। तो उसने कहा, मैं बताऊं कि उनका जो स्वरूप और जो पहना था और जिस प्रकार का था वो डर लगे ऐसा था। एक बार तो हुआ कि ये कौन आया। तो हमने बातचीत की तो कहते हैं कि अरे इतना अच्छा कार्य करते हो, आपको कौन रोक सकता है। मैंने कहा भाई मना कर रहे हैं। कहते हैं कल से शुरू करो। हमने कहा थोड़े थोड़े लोगों को योग के लिए है ना वहां भेजो, इनको क्या होता है। तो फिर चलने लगा धीरे धीरे, कोई बोलता नहीं था कुछ, क्योंकि वो जो जिन्होंने हमें हेल्प की वो वहां का भाई था। तो किसी सोसाइटी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ आवाज है वो निकाल सके। और वहां चालू हो गया और आज बहुत अच्छे से चल रहा है, सारी सोसाइटी सहयोग देती है, वहां के हॉल शिविर के लिए फ्री में देती है, कितना रिस्पेक्ट करती है। लेकिन दुनिया के लिए वो जो भी है, हमारा भाई तो सच्चा भाई है। और अभी भी जब भी कभी मिलता है तो कहता है कि बहन आपको कोई तकलीफ नहीं है ना। हमने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं है, भोग जाता है, आता है तो कभी सेंटर पर मिलता भी है। तो उसकी वाइफ ने भी कोर्स किया, प्रकृति के साथ व्यक्ति के साथ कैसे हम पेश आते हैं उस पर आधार है। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पर, संबंध के लिए। संबंधों में हमेशा पेपर आता है स्वभाव और संस्कार का, मेजोरिटी एक छोटे परिवार के अंदर भी स्वभाव संस्कार की बात आती है। बाबा का तो इतना बड़ा परिवार, हर जगह पर स्वभाव संस्कार की बात होती है। अभी बाबा ने ये कहा है कि अंत में स्वभाव और संस्कार का टकराव भी बहुत होगा, क्योंकि अलग अलग स्वभाव अलग अलग संस्कार हैं, तो ये टकराव है वो होगा। लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है, पहले स्वभाव की बात लेते हैं। एक तो हर व्यक्ति के प्रति स्व माना मैं आत्मा, सारी आत्माओं के साथ जहां भी साथी हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, संबंधी, उनके प्रति मेरा स्वयं का भाव कैसा है, मेरी भावना कैसी है। भाव और भावना हम जानते हैं कि पहुंचती है सामने वाले को, हमारे जो भाव होते हैं सामने वाले तक वो वाइब्रेशन जाते हैं, जाकर के उनके अंदर वो भाव भी जगाते हैं। सिर्फ पहुंचते नहीं है, उनको भी जैसे भाव हमने रखे ऐसे भाव उनके मन में, उनके हृदय में भी हमारे लिए भी जागते हैं। तो फिर स्वभाव का टकराव नहीं होगा ना। ऐसे संस्कारों के लिए बाबा ने कहा है कि अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करो। जो मेरे संस्कार टक्कर खाते हैं उनका मुझे अंतिम संस्कार करना है, खत्म कर देना है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई मैं अपने संस्कारों को अंतिम संस्कार करूं, लेकिन सामने वाले के संस्कार फिर मैं क्या करूं? उनके संस्कार अलग हैं, हम नहीं चाहते। नहीं, कई बार कहते हैं कि भाई हमारा एक्सीडेंट, सामने वाला आके एक्सीडेंट करे तो क्या करे, वो कार को ठोक देता है। तो उनके संस्कार हमारे साथ टकराव करे तो फिर क्या करे, ये भी तो प्रश्न तो उठता है ना हमें। तब क्या करें अभी? इलाज बाबा ने तो हमें हर चीज का इलाज तो बताया ही है। हर आत्मा के जो संस्कार हैं वो अपने अपने संस्कार हैं। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका प्रयोग भी किया है। एक सेंचर था, वहां पर एक व्यक्ति थी कि जिनके संस्कार ऐसे सबके साथ टक्कर होती थी और उनसे सब लोग डिस्टर्ब होते थे, अपसेट होते थे। वो तो अपसेट थी तभी तो दूसरों को भी अपसेट कर रहे थे। तो अभी होता था कि अब इलाज क्या किया जाए। अभी इतने वर्षों से बाबा के बने हैं तो अभी उनको वापस घर तो नहीं भेजेंगे, ईश्वर की गोद में आई हुई आत्मा है तो अभी। लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा, उसका भी कल्याण, सबका कल्याण हो, सबके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। तो उस पर मैंने सोचा कि देखो, जैसे तैरने वाले होते हैं, कुछ लोगों की कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो सागर में तैर पाते हैं, कुछ नदी में तैर पाते हैं, कोई सरोवर में तैर पाते हैं, और कोई है ना तुपके में तैर पाते हैं। छोटा सा हो ना उसी में वो तैर सकेंगे, बड़ी जगह पर वो तैर नहीं सकते। तो उनसे समझ में आता था कि ये आत्मा संगठन के बीच में उनको चलना मुश्किल है। हमने उस सेंटर को इलाज बताया कि ये आपका एक छोटा सा स्थान है, वहां सेंटर खोल दो। और उनको इंचार्ज भी बनने को मिला और रहे, और वो आराम से सेवा करे, आप लोग भी आराम से रहो। ये है इलाज। टकराव होता है तो क्या करेंगे ना, सामने वाले नहीं संस्कार। बाबा कहते किनारा करो, लेकिन उनका भी सॉल्यूशन, उस आत्मा का भी तो निकालना है ना हमें। तो ये है स्वभाव और संस्कार की बात है। और दूसरी बात थी जो आगे तत्वों के तूफानों की बात कही, उसमें मिस सुवा कि तूफान जब आता है तो कहते हैं समुद्र में भी तूफान आए तो वहां जो सर्कल है ना जहां से तूफान शुरू हुआ है वहां बीच में रहो तो तकलीफ नहीं होती है। साइक्लोन के लिए भी कहते हैं जहां उसकी चक्री चलती है वहां कुछ तकलीफ नहीं होगी, बाकी जगह पर तकलीफ होती है। तो बाबा ने भी बहुत अच्छा इलाज बताया है कि आप भी बीज रूप बिंदु रूप स्थिति में रहकर उस किल से जुड़े रहो, कनेक्ट रहो। इसलिए कहावत है, मुझे याद नहीं रहती थी, मैं लिख के ले आई हूं, कहते चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पातन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो फिर उसके उत्तर में है, चलती चाकी देख कर दिया कमाल थथिया है, जो किल से लगा रखे उसे काल कभी न खाए। स्किल से लगा रहे, यहां भी उससे जुड़े हुए कनेक्ट रहो, तो फिर तूफान में भी बाबा याद आए हमको, है ना, तो फिर सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। और संस्कारों की बात है, लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की लाइफ जीने वाले सामने बैठे हैं, है ना। तो बाबा ने अभी भी एक मुरली में बहुत अच्छा इलाज बताया है कि लौकिक में चाहे अलौकिक में जो भी साथ रहते हो, उनको सेवा का आपका संबंध है, देह के संबंध से नहीं देखो। हमारा जो कनेक्शन संपर्क आप लोगों का मेरे से, मेरा आपसे, किसकी वजह से है? शरीर तो कोई संबंध नहीं है, ब्लड कनेक्शन नहीं है, सेवा के रिश्ते हैं, सेवा का संबंध है हमारा। उस संबंध से संबंध को निभाओ। संबंध निभाने में लौकिकपन आ जाता है ना, तो फिर तकलीफ है। लौकिक में भी ये सोचो कि भगवान ने इन आत्माओं की सेवा करने की, पालना करने की मुझे निमित्त बनाया है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मुझे अच्छे से निभाना। लेकिन लौकिक भाव से है, नहीं देखो। अभी मुझे किसी ने उदाहरण बताया, कपल था, भाई बीमार पड़े, वाइफ सेवा कर रही थी, लेकिन ज्ञानियों में कितना अंतर पड़ता है। उसने कहा कि पत्नी को कह रहे हैं कि आप मेरी सेवा कर रही है, तो पत्नी समझ करके और पति समझ के मेरी सेवा करती है, तू है ना एक नर्स है और मेरी एक नर्स सेवा करती है ना, लेडी जेंट्स की, तू नर्स है और तू मेरी सेवा कर रही। अभी इनका भाव कितना शुद्ध है, कहते तुमको भी इसी भाव से मेरी क्या करनी है, सेवा करनी। सेवा भी हो रही है लेकिन प्योरिटी का भाव भी रहता है। तो हम जो संबंध निभा रहे हैं लौकिक में अलौकिक में, ये हमारा सेवा का संबंध है, थोड़े समय का संबंध है। नर्स का पेशेंट का कितने समय का रिश्ता होता है, हमारे लौकिक रिश्ते भी कितने समय के हैं, कुछ गिने चुने साल हैं, उससे अधिक तो रिश्ते है नहीं हमारे। ये समझ करके हम व्यवहार करें, सेवा करें, पालना करें ना, तो फिर ये टकराव की जो बात होती है ना, उसमें बहुत अंतर फर्क पड़ेगा। मुझे एक याद आता है, बोरीवली में एक कपल आया था, बहुत डिस्टर्ब अपसेट हुए थे। फिर वो आए और कहा क्या प्रॉब्लम है, तो उसका बेटा बहुत ही हेल्दी, पढ़ने में अच्छा था, और अचानक कुछ बीमारी होके, ऐसी बीमारी, अनकॉन्शियस स्टेज में चला गया। खूब प्रयत्न किया, कॉन्शियस में नहीं आया। अभी इसको संभालना, मतलब इतना अनकॉन्शियस, उसको कोई भान, आप पानी पिलाओ, आपको ध्यान रखना है, इतने बजे खिलाना है, इतने बजे पिलाना है, इतने बजे उसकी करवट बदलनी, इतने बजे नहलाना है, इतने बजे कब, उसको कुछ भी होश बोश कुछ नहीं। अभी कितने एज उसकी बढ़ती गई, तो उसके वजह से वो लोग अपसेट थे। आए, कोर्स किया, बातें ज्ञान की समझी, उसके बाद वो बहन ने मुझे बताया कि बहन पहले भी मैं कंटाल करके, दुखी हो करके इसका सारी देखभाल करती थी, लेकिन जब से ज्ञान लिया तब से मैंने सोचा है कि किसी ने मुझे भगवान लाला की सेवा दी है, कृष्ण की सेवा मुझे दी है। अभी मैं उस भाव से, एक लाला को मैंने अपने घर में रखा है और उसकी मैं सेवा कर रही हूं, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब मैं बहुत प्यार से, खुशी से, और मेरा दर्द दुख है ना, वो चला गया। मैंने देखा कि इतनी प्यार से, उसके कारण वो अमेरिका शिफ्ट हुए, वहां इलाज कराए, ठीक हो जाए, फिर वहां के निवासी हो गए, तो सारी फ्री ट्रीटमेंट वगैरह उसकी होने लगी। अभी उसने शरीर भी छोड़ दिया बच्चे ने, अभी मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन अभी उसकी माँ को भी गवर्नमेंट पैसा देती है, बेटे ने शरीर छोड़ दिया। उसकी सेवा यहाँ की और यहाँ ही उसको क्या है, फल भी मिल रहा है, और प्यार से जिंदगी क्या किया, जिया। तो ये संबंध हमारे सेवा के लिए है, ये टेम्पररी रिलेशन है हमारे, ये समझ के जिए ना, कितने समय के लिए है, टकराव करके क्या करेंगे, क्या मिलेगा। तीसरी बात आती है कि शारीरिक बीमारी है, जिसको हम कर्म भोग भी कहते हैं, अर्थात उसमें स्पष्ट है कि जो भी तकलीफ आ रही है शारीरिक, ये मेरे ही कर्मों का रिजल्ट, मेरी ही कर्मों का परिणाम है ये। अभी वो भोगना जो तकलीफ है वो तो है, और कोई ले नहीं सकेगा, वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो दर्द और पेन वो तो कोई नहीं लेगा, वो तो खुद को ही सहना पड़ेगा। अभी मुझे समझ में आया मेरे कर्मों का रिजल्ट, अभी मैं रो के चिल्ला के, है ना, दुखी हो करके उस पीरियड को पास करूं, और दूसरा है इस समझ से मेरे कर्मों का ये फल है और मुझे उसको चुक्त करना है। दृष्टिकोण बदल जाए। अभी भी एक बहन ने बहुत अच्छा इलाज मुझे बताया कि जानकी दादी ने ये बात कही थी कि आप है कि जो दर्द को भोग रखे हो, उस दर्द को आप देखने वाले बनो, साक्षी होके किसको दर्द हो रहा है आप देख रहे हो, ऐसे अपने दर्द को भी स्वयं क्या करो, दृष्टि देखने वाले बनो। दूसरा, बाबा ने जो इलाज बताया है कि कोई भी प्रकार का दर्द पेन है तो उसका वर्णन न किया करो। हम लोग क्या करते हैं, सिर में दर्द है ना, सारे दिन में गिनती करें ना, कितने लोगों के पास और कितनी बार हम बोलते हैं, आज मुझे है ना सर में बहुत दर्द, वो मिला तो उसको बोला, जो आया सामने दर्द का वर्णन हम करते हैं, चिंतन भी करते हैं और उसका वर्णन। तो चिंतन और वर्णन करने से वो बीमारी क्या होती है, बाबा ने कहा बढ़ती है। चिंतन न करो, वर्णन न करो। दूसरी बात है कि जो बीमारी है ने? अब आई है और हमें उसको चुप्त तो करना ही करना है, उसके बजाय मैं अपने मन और बुद्धि को, आज ही बाबा ने कहा, बिजी करो। दर्द में भी ये टेक्निक काम लगती है, अपने मन बुद्धि को बिजी करो, कुछ अच्छा पढ़ो। आजकल तो टीवी मोबाइल में बहुत आध्यात्मिक अच्छी अच्छी बातें हैं, वो देखने में मन को इन्वॉल्व करो, पढ़ने में, सोचने में, या तो आपसे बीमार होते हो मिलने आते हैं तो ज्ञान की उनके साथ क्या करो, चर्चा करो, उसमें मन और बुद्धि बिजी होती है ना, पेन है गया नहीं है, लेकिन मेरा मन हट गया वहां से, दर्द दर्द की जगह है लेकिन मेरा मन वहां कनेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे वो दर्द की फीलिंग है, क्योंकि कनेक्ट होने से ही फीलिंग आती है, कनेक्शन हो तो लाइट आए, पंखा चले, तो कनेक्शन मन का दूसरी जगह जोड़ दिया तो वो तकलीफ हमें कम फील होती है। ये एक शरीर के कर्म भोग को भोगने का ये है। राजेश भाई बैठे हैं मेरे सामने, बीच में मैं 10 दिन हॉस्पिटल में थी, टाइम हो गया उस बात को, और उनसे अच्छी बात मैंने सीखी कि वो आए मिलने के लिए। इन्होंने कोई मेरी बीमारी की पूछताछ नहीं की और न ही उसकी कोई चर्चा की, लेकिन आए और बहुत अच्छी ज्ञान की, खुशी की, सेवाओं की, ये बातें उन्होंने की और कहा बहन हम योग करेंगे। और कुछ समय हमने योग किया, पूरे कमरे का वातावरण इतना चार्ज और इतना सुकून सा मुझे उस बीमारी में फील हुआ। तब से मैंने सीखा कि कहां कोई बीमार को पूछने जाते हैं ना, तो हम तुरंत पूछते आपको क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, अच्छा कितने टांके आए, कितने घंटे चला आपका ऑपरेशन, कितने दिन हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा है, आपके टांके कब टूटने वाले हैं। वो टूटा हुआ उसको और तोड़ रहे, टांके तो जब टूटे तब टूटे लेकिन उसका मन है उसको तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। तब से सीखा कि कहीं जाओ किससे मिलने, यदि आप उसकी जान पहचान है तो क्या उसको पसंद है, किस प्रकार का विषय, तो वो कुछ बातें करो, अच्छी उमंग खुशी न मन पसंद कुछ ऐसी बातें करके उनके मन को उसमें इन्वॉल्व करो, तो उनकी तकलीफ क्या होगी, दूर होगी। तो ये है हमारे कर्म भोग को चुप्त करने का तरीका। और बाबा ने कहा है कि योग बल से कर्म भोग को क्या करो, बाबा की मदद लो। कहते हैं बाबा की मदद से वो किरणें रेस जहां जो तकलीफ है वहां उस रेस को पहुंचाओ, शुभ भावनाओं को पहुंचाओ, श्रेष्ठ संकल्पों को पहुंचाओ, और बीमारी जो है वो है लेकिन पॉजिटिव विचार में अपने आप को ले जाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी, बस अभी थोड़ा समय है, ठीक हुए कि हुए, आपका अपने प्रति सोच भी नेगेटिव तब मन कमजोर होता है और हम लोग ज्यादा। कई बार जो मिलने वाला आता है ना, समझो कि मुझे कोई तकलीफ है, तो ऐसे 5 उदाहरण बताएंगे कि हमारी इस रिलेटिव को ही हुआ था, फिर ऐसे हो गया था, फिर उसको भी ऐसे हुआ था, फिर उनको तो ऐसा हुआ, बात मत पूछो ना? तो हालत और ज्यादा क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो ऐसी बातें चर्चा न करो, उनको जो मन पसंद आप जानते हो उनके नेचर को, कुछ गीत सुनाओ, कुछ मनोरंजन की बातें कहो, कुछ सफलता की बातें करो, और खुद भी खुद पर काम करना पड़े, वो तो टेम्पररी आके जाएंगे, थोड़ा समय खुश करके जाएंगे, बाद में क्या। तो खुद भी खुद के लिए पॉजिटिव है ना सोचे, ये कर्म भोग को चुप्त करने का तरीका है, हमारे वरिष्ठों ने, दादियों ने, आदि ने किया है। और हमारा तो इतना ब्राह्मण परिवार बड़ा, किसी की भी बीमारी का सोचे तो हम योग करें, अपने शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन इतने लोगों के मिले तो हमारी बीमारी तो भागनी भागनी है। ये फेथ, ये निश्चय विश्वास। अभी भारती बहन यहाँ योग कराने के लिए बैठने वाली थी तो मेरे से मिली, दृष्टि ले रही थी, मैंने कहा कि देखो तुम भाग्यशाली हो, यहाँ वहाँ बैठे, यहाँ बैठे हुए हम कितने लोगों को देख पा रहे, कितनों को दृष्टि दे, और यहाँ एक बैठा हुआ इनको कितनों की दृष्टि मिल रही है, तो हम ज्यादा भाग्यशाली है। इतनी शक्ति, इतनी दुआएं क्या होता है हमको मिल रही है, इसलिए सशक्त होके हमको दुआएं लेने का काम करना है। तो ये दुआओं से भी हमारी हेल्थ, हमारी बीमारी का अच्छा डॉक्टर मिल जाता, अच्छा इलाज मिल जाता है, और बहुत अच्छे से आप है ना स्वस्थ हो सकते हो। तो ये कर्म भोग को वैसे जितना कनेक्शन रहेगा, लाइन क्लियर रहेगी, उतना वो सिचुएशन आपके पॉजिटिव बनेगा और आप जल्दी से ठीक हो पाओगे। अभी चौथी बात है कि जो तमोप्रधान आत्माओं का प्रकोप, बाबा ने ये भी हमें अंतिम समय के लिए क्लियर किया है कि तमोप्रधान इविल सोल का भी उपद्रव होगा और ऐसी आत्माएं भी सामने आपके आएगी। उसमें बहुत अच्छा बाबा ने स्पष्ट किया है, एक है कि इविल आत्मा का आना, दूसरा है बाबा ने आप लोगों के पास वह इविल सोल कम आएगी, लेकिन बाबा ने कहा है कि जो इर्द गिर्द आपके रहने वाले हैं ना, उनके जो संस्कार है वो संस्कार इविल रूप सूक्ष्म में धारण करके आपके सामने आएंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, इविल सोल को भूत कहते हैं सिंपल शब्दों में। तो कभी किसको बहुत जबरदस्त गुस्सा आए तो क्या कहते हैं, क्रोध का भूत, भूत आया है, काम का भूत है ना। तो ये विकृतियां हैं, वो जब ओवर होती है, इमर्ज होती है, तो वो भूत का ही रूप ले लेती है। बाबा ने कहा आपके पास वैसे आएंगे, संस्कार इविल रूप धारण करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऐसे संस्कार रूप में आपके सामने ये आत्माएं पेपर लेगी। और बिना पेपर तो कोई पास होता है, बिना पेपर प्रमोशन होता है, बिना पेपर कोई क्लास चेंज होती है। तो पेपर तो हर प्रकार के, और जितनी ऊंची पढ़ाई करो, आज सुबह में बाबा ने कहा आपकी पढ़ाई है ना बहुत ऊंची है, तो फिर पेपर भी तो इतने टफ होंगे, पेपर भी तो टफ होंगे ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि सर्वशक्तिमान पिता हमारे साथ है, हम आत्मा भी स्वयं एक शक्ति है, एक ताकत है। बाबा ने हमें अपनी ताकत का एहसास कराया है कि इतना लंबा चौड़ा ये शरीर, इतनी छोटी स्टार जो देखने में नहीं आती है, मेरी आत्मा को देख रहे हो, दिखने में नहीं आती है, और इतने बड़े शरीर को लेके चलाती है, कितनी प्रवृत्ति करती है, कितने कार्य करवाती है, कितने वर्षों से, कितने जन्मों से वही सोल अलग अलग शरीर को धारण करके कर्म कर रही है। तो इसमें कम ताकत है, जबरदस्त शक्ति है इसके अंदर, खुद भी शक्तिशाली है, हमारा पिता भी सर्वशक्तिवान है। और बाबा ने कहा है कि आप अपनी बिंदी में टिक जाओ। क्यों बार 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 रोज ये पाठ पढ़ाता, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो, बाबा को याद करो। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं का उद्धार करना आगे चल कर के ये सेवा भी आपको करनी है, सिर्फ भाषा नहीं करने का नहीं, ऐसी इविल आत्माओं का कल्याण करना, उद्धार करना, ये सेवा भी आपको करनी है। योग करो ऐसी आत्माओं के लिए। अपने यज्ञ में भी कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस है कि इविल सोल आती थी, फिर योग किया, सामने बिठा के योग करवाया, धीरे 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 उससे वो मुक्त हुए हैं। लेकिन एक भक्ति का उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो बताऊं कि बचपन से हमको गायत्री मंत्र, ब्राह्मण थे तो गायत्री मंत्र करते थे। तो एक बार ये हमारे वहां के नेबर के घर में कोई रिलेटिव आया तो उसके अंदर इविल सोल आती थी। तो उनको पता था कि ये लोग गायत्री मंत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो वो ले आए वहां पर। ले आए फादर ने उसको गायत्री मंत्र उच्चारण करवाया ना, वहां पर उन्होंने बोला, माला दी कि रोज तुम ये इतनी माला गायत्री की करना। लेकिन जब वो अपने घर में जाता था, मंत्र बोल ही नहीं पाता था, उच्चारण ही नहीं करता था। हमारे वहां आए तो वो बोले, लेकिन घर जाए उच्चारण ही न कर सके। इविल सोल उसमें आई और पूछा, तो कहा कि इनके घर में मैं नहीं बोल, वहां नहीं जा सकता, इसीलिए वहां वो बोल पाता था। वहां तक उस इविल सोल ने कहा कि परिवार के सदस्य सारे गायत्री करने वाले कहते हैं, ये पास होते हैं ना तो रास्तों के झाड़ में हम होते हैं तो हट जाना पड़ता है हमको, हम नहीं रह पाते। एक गायत्री मंत्र का ये शक्ति, यहाँ सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ। आप सबको मिला है ना बाबा का चित्र। बच्चे निश्चिंत रहो, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। बस ये एहसास, हर पल बाबा मेरे साथ है, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता कोई। योग का कवच शक्ति है हमारे पास, कोई टच नहीं कर सकता, कोई इविल चीज वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता है। ये हमें फेथ, विश्वास होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ऐसी इविल चीजों से हम सेफ रहेंगे। और ही बाबा ने कहा, इतनी शक्ति अपनी बढ़ाओ। और उसके लिए बाबा ने एक इशारा दिया है कि आप अपना समय, संकल्प और बोल उसकी खूब बचत करो, खूब बचाओ, उसको सेव करो। ये तब हमारे संकल्प में, हमारे शब्दों में वो शक्ति होगी कि उस आत्मा का उद्धार, कल्याण, मुक्ति। ऐसी भी सोल खुद भी चाहती है कि मैं मुक्त हूं, लेकिन कोई करने वाला चाहिए। तो ये सूक्ष्म सेवा भी हम आत्माओं को करनी है, इसलिए बाबा ने कहा कि इसकी बचत खूब करके रखो, तो आपकी शक्ति इतनी पावरफुल है वह होगी। तो ये है अंतिम समय का सीन, और अंतिम हमारी ये सूक्ष्म शक्तियों को बढ़ाना, ये है हमारी तैयारी। ओम शांति।